Dear learners, welcome in our PC program of this going to discuss about electrochemistry, that is your senior secondary chemistry, and this is in your book number 1, module 5, and the unit is 15. And basically in this chapter, we will today discuss about the general concepts related to oxidation and reduction, especially electronic concepts we have learned in class 10 also. And balancing of redox reaction, what is oxidation number, and different methods of balancing redox reactions, like oxidation number method and ion electron method. And other than this, we will also discuss about electrolytic conductance and Kolmogorov's law and its applications. To know more about these concepts of electrochemistry, we have invited. And in this session, first of all, I just want to know that what is the electronic concept of oxidation and reduction.
Good afternoon, learners. Today we are going to discuss the oxidation reduction based on the electron transfer. Oxidation reduction reactions are very important in chemistry. The electronic concept of this oxidation reduction process, so oxidation in which an atom or ion loses one or more electrons to the other atom of the element in the compound, that is called the oxidation. Process in which an atom or an ion gains an electron, one or more electron, that is called the reduction. Let us take a very simple example. Sodium gives one electron and forms sodium ion. So sodium losing one electron, so it is a oxidation. Chlorine accepts one electron, becomes chloride ion, it becomes reduction. Sodium undergoes the oxidation and the chlorine undergoes the reduction.
Reduction process.
Hence, sodium helps chlorine to undergo reduction. And therefore, sodium is called the is called reducing agent, or we can call the reductant. In the same way, reductant is a species in a chemical reaction which loses one electron to the another element. In this case, the chlorine, which accepts one electron and helps in losing the electron by sodium, then it is a oxidizing agent.
So in the general concept, we can say that the process by which an element or a compound releases electron, that process is known as oxidation. And the process in which a particular chemical species, elements, accept electron, they are known as reduction. And very beautifully, sir, explained to you that the simple definition, you can say that the chemical species donate the, release the electron, it is oxidation. And when it is gained the electron, that is known as reduction. And the very good example is the formation of sodium and chloride ion. When we react sodium metal with the chlorine molecule, the sodium has tendency to lose the electron, that sodium is oxidized to Na+, and the chlorine has tendency to accept the electron to form chloride. And so in this example, sodium is oxidized and chlorine molecule is reduced to chloride ion. So this is the very important concept, and this is the basic concept you have to remember to know better about this chapter, because all the concepts we will discuss later on will be based on this concept. Further, I just want to know you, sir, what is redox reaction and how it can be defined?
As you know that the oxidation and a reduction in a chemical reaction, they do not take place independently. So when there is a reduction of one element, there will be an oxidation of the
also.
So in a chemical reaction, oxidation and reduction both take place simultaneously. So the combination of these two, the oxidation and reduction, it is called the redox reaction or the oxidation reduction
reactions. That means in this type of reaction, both the oxidation and reaction process, that is the loss and gain of electron, takes place simultaneously. In this reaction, the particular term is used, that the reductants and oxidants. So in a given chemical reaction, how we can find out which one is oxidant and which one is reductant?
In this case, let us take one example, zinc. If zinc rod we dip in the solution of copper sulfate.
Mm-hmm.
In another beaker, we dip copper wire
mm-hmm.
into the silver nitrate solution.
Yeah.
We see the changes.
Mm.
After some time, if you see, then we found that zinc is dissolved in the solution.
Mm-hmm.
So zinc is oxidized mm-hmm. into zinc ions.
Mm.
In the another case, the copper is dissolved in the solution mm-hmm. of the silver nitrate
mm-hmm.
and the silver is deposited on the copper ion.
Mm, copper ion.
So in this case, we can say when zinc is dipped into the copper sulfate solution, zinc is oxidized into zinc ions
mm-hmm.
and copper ions, they are reduced into copper copper mm-hmm. copper
mm-hmm.
and this copper is deposited on the mm-hmm. zinc sulfate.
Mm-hmm.
In the another way, another beaker, when the copper is dipped into silver nitrate solution,
mm-hmm.
the copper oxidized into copper ions
mm-hmm.
and the silver ions, because the solution is a silver nitrate, the mm-hmm. silver ions, they are reduced into
mm-hmm.
silver.
Silver.
So, copper goes to the solution
mm-hmm.
into the form of the copper ions
mm-hmm.
and silver is deposited on the copper in the form of the silver. So, in this reaction, copper is oxidized and mm-hmm. silver is reduced. So, copper is oxidized, so it is an reductant.
Mm-hmm.
And silver, which is reduced to silver, it is an oxidant.
Mm-hmm.
So, we can identify
mm-hmm.
the oxidant and reductant mm-hmm. in a simple chemical
reaction.
So, identification mm-hmm. of the mm-hmm. oxidant and the reductant
mm-hmm.
in a chemical reaction,
mm-hmm.
it depends, is based on the fact
mm-hmm.
of the electron transfer.
Mm-hmm. So, if we have idea about the oxidation reduction, which element is going to oxidation and which one is going to reduction, we can very easily identify which one is oxidant and reductant. And this is just reverse. Just, sir, example, just told you, in the case of reaction of copper with the silver nitrate solution, we explained that the copper is oxidized to copper 2 plus ion and silver ion present in the silver nitrate solution, that is reduced to silver metal. So, the part which is oxidized is known as reductant because the electron released by this oxidation process is used to reduce any other ion. In this case, silver plus ion is reduced to silver metal. So, if you identify the oxidation reduction part, you just go to reverse the part that is oxidized, it will act as reductant, and the which is reduced will be act as oxidant. So, just reverse and very simple concept, you have to remember that how we can identify the oxidation part, reduction part, which one is reducing agent or which one is oxidizing agent. One equation is given here, sir. I just want to know that this equation represents that H2S plus nitric acid, and that gives nitric oxide plus sulfur and plus H2O. So, in this example, which one is oxidizing agent and which one is reducing agent? How we can explain this?
Now, in this case, H2S plus HNO3
mm-hmm.
changes to NO plus S plus
mm-hmm.
H2O.
Mm-hmm.
In this case, I think let us take this example.
First of
after
all,
some time, let us begin
take
the oxidation number.
Oxidation number.
Then we will discuss it.
So, first of all, you just know to give the answer of this question. We first of all understand what is the meaning of oxidation number.
It is very easy to find out the oxidation and reduction in the simple chemical reactions.
Mm-hmm.
We have just cited some examples.
Mm-hmm.
Sodium loses one electron, becomes sodium ion, oxidation, chloride ion, accepts one electron, becomes
mm-hmm.
chloride ion, so reduction. It is very simple to identify which is oxidized and which is reduced.
Yeah.
But in the another example, involving ferrous sulfate and potassium permanganate,
mm-hmm.
it is difficult to say mm-hmm. which is oxidized and mm-hmm. which is reduced.
Yeah.
So, to identify the oxidation reduction process in such chemical reactions,
mm-hmm.
we are using another term known as oxidation number.
Oxidation number, yeah.
Or we can sometimes call the oxidation state.
Mm-hmm.
Now, this oxidation number is the apparent charge
mm-hmm.
which an atom
mm-hmm.
appears to have when each pair of electron in a covalent bond
mm-hmm.
is counted towards the more electronegative atom.
Yeah.
So, oxidation number is always assigned to an atom.
Mm-hmm.
This number may be positive, this number may be negative, this number may become zero, this number may become fraction also. So this is a number which is, number is in the form of a charge which an atom has when each pair of electron, the covalent bond, is towards, count is towards the more electronegative atom. So number indicates, this oxidation number indicates the number of electrons that has been shifted away from an atom toward the more electronegative atom. So we can say the positive sign which is given to the oxidation number, it is for the atom shifting the electron away from itself and going toward the more electronegative atom. The negative oxidation number is given to that atom which is more electronegative. So the concept of the oxidation number, it is based on the assumption that in a polyatomic molecule, or you can say in the polyvalent covalent bonding, shared pair of electrons belongs to the more electronegative atom. So always we have to consider in a compound of two or more elements, which atom is more electronegative and which is more electropositive. So electron pair, it is transferred or it is shifted toward the more electronegative atom. So when it is shifted toward the more electronegative atom, the oxidation number is you can say in the negative, and from which atom it is shifted toward that, that is electropositive. That gives the positive oxidation number.
And if we know the oxidation number, is there any rules for assigning oxidation number?
There are. It is very important to know for the learners what are the rules for assigning the oxidation number. So I am giving these rules. There are certain rules which are to be followed while assigning the oxidation number to an atom of an element in a compound. Oxidation number is taken as zero if atoms is in the elemental form. Sodium Na.
H2, it can be 0.
S4, S6, P4. So, inke jitne bhi jo element form mein hai, ya allotropic form mein hai, inka oxidation number 0 maana
jata hota hai.
The oxidation number of a monoatomic ion is the same as the charge on that atom. Sodium positive, positive 1 oxidation, magnesium 2 positive, 2 oxidation number which is positive,
aluminium 3
positive, 3 oxidation. Chlorine 1 negative, 1 negative oxidation number, S2 negative, 2 negative oxidation
oxide
number.
Ion.
So, किसी भी पॉली किसी भी मतलब मोनोएटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर डिपेंड करता है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2 एक्सेप्ट इन सम केसेस
इन परऑक्साइड्स
Na2 और H2O2 वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर इज
-1 भी है.
इन सुपर ऑक्साइड्स लाइक KO2 it is -1/2. The oxidation number of oxygen in OF2, oxygen difluoride.
Sometimes positive also.
So in that case, the oxidation number is +2. So this is the case where these some exceptions are there, but the oxidation number of oxygen in the compound is generally -2.
If we calculate this process in these rules, hydrogen we have to take +1.
Hydrogen. The oxidation number of hydrogen is +1
generally
when combined with non-metals, HCl, HBr, HI. So in this case, when it is combined with the non-metal, the hydrogen has the +1 oxidation number. But when it is combined with the metals,
in case
then
of hydride,
in that case it is -1. Like metal, CH2, calcium hydride,
metal hydride.
So in that case, it is the -1. In case of, there are some interesting examples. HI, the iodine, has the oxidation number -1. But in IF7, the oxidation number of iodine is +7. Because fluorine is more electronegative than hydrogen. Then it is compared like this. So iodine has the +7 oxidation number. The oxidation number of alkali metals and alkaline earth metals are positive 1 and positive 2 respectively.
According to their valency.
In their compounds. Mm-hmm. In a compound made up of different elements, the more electronegative element will have the negative oxidation number.
Yeah.
And less electronegative atom has the
positive
oxidation
number.
For example, you can consider the case of NCl3. In this case, chlorine is more electronegative than nitrogen. So in NCl3, we can calculate the oxidation number of nitrogen, that is plus 3, because the chlorine has minus 1 oxidation number.
Yeah.
And there are 3 chlorine atoms, so nitrogen ka jo oxidation number hai wo
plus
3. The sum of the oxidation number of all the atoms in a compound, in a molecule of a compound, is always 0.
Zero.
And on the basis of this, we can calculate the oxidation number of the atoms of different elements in a compound. In a polyatomic ion, the sum of the oxidation number of all the atoms is equal to the charge on that particular polyatomic ion. For example, in the case of CO32 negative carbonate ion, the sum of the oxidation number of carbon and oxygen is minus 2, because the charge is minus 2, and hence the oxidation number of carbon is plus 4. So these are the different rules which are used to calculate or to assign the oxidation number of the atom of different elements in a compound.
Given compound. So, dear learners, हम लोग अभी बात कर रहे थे oxidation number की, और oxidation number किसी compound में किसी element का oxidation number हम कैसे find out करेंगे? इसके लिए हमने आपको rules बताया कि पहला आप rules याद कर लें, आपके books में भी दिया है. Hydrogen का oxidation number plus 1 लेंगे, depend करता है वो किसके साथ compound बना है. Oxygen का minus 2, oxide अगर है, peroxide है, in this case we have to take minus 1. और जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी जितनी वैलेंसीज होती है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. डिपेंड कर रहा हो किस एलिमेंट के साथ कंबाइंड है. और मेटल्स के लिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके वैलेंसी के बराबर होगा. और चूंकि ये सारे मेटल्स हैं तो इनका वैलेंस जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस में होगा. जैसे सोडियम का प्लस 1 लेंगे, मैग्नीशियम का प्लस 2 लेंगे, एल्युमिनियम का प्लस 3 लेंगे. तो दीज आर द सिंपल रूल्स यू हैव टू जस्ट रिमेंबर एंड यू कैन वेरी इजिली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड. एंड सर जस्ट टू लीव द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट द ऑक्सीड सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इज इक्वल टू 0. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर नाउ गोइंग टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर एग्जाम्पल in which we have to find out the oxidation number of a particular element. For example, sir, suppose we have to find out the oxidation number of carbon in methane molecule. So, what the step the learner should start to calculate this oxidation number of carbon?
Now, in this case, as we have told you as per rules, the hydrogen is plus 1. And when hydrogen has plus 1, so carbon is minus 4.
So, we have to write in this way.
Or we can say like this. We have to find out of carbon. The oxidation number of carbon is X.
Suppose this is X.
Hydrogen oxidation number is plus 1. So, X plus
1 into
4 is equal to
0.
So, X is equal to minus 4. The oxidation number of carbon is minus 4.
So, we have to start in this way. We have to write the, suppose we have to calculate the formula oxidation number of carbon in methane molecule. You write the methane CH4 and then write the this elements ka aapka identify karna oxidation number. You have to just mark, suppose we have to find out the oxidation number of carbon. To write the oxidation number of carbon, suppose we have to identify the X and then plus hydrogen ka oxidation number aapko pata hai plus 1 hota hai, plus 1 aur chuki 4 atom isliye into 4 kar denge. That is equal to 0. 0 इसलिए बोल रहे हैं, हमने भी जस्ट बताया किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड जिसमें कोई चार्ज नहीं लिखा है, अमोनिया, मीथेन, वाटर मॉलिक्यूल, इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा या ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिखा. एंड देन इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट विल कम्स टू माइनस 4. सपोज अनदर एग्जाम्पल, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन. सो हाउ द लर्नर विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग
इन
carbonate ion.
Carbonate ion. CO32 negative. So in CO32 negative, if we say that the oxidation number of carbon is X.
Suppose it is X.
Plus, there are three carbon oxygen atoms. So minus 2 multiplied by 3.
3. That is equal.
The charge on it, it is equal to the charge.
Charge, yeah.
And now charge is minus charge. 2.
So the minus 2.
So X is equal to minus 2 plus 6. That is equal to plus 4. So in carbonate ion, the oxidation number of carbon is plus 4. As we have calculated, the sum of the oxidation number is equal to the charge of the on that particular ion. Carbonate ion में जो charge जो minus 2 का है, तो हम इसको carbonate का और oxygen का हम दो लेते हैं negative, तो carbon का जो charge oxidation number plus 4 है.
तो ये इस दोनों example से एक चीज confirm हुआ कि अगर किसी भी element का oxidation number depend करता है वो किसके साथ combination है. जैसे methane वाले examples में आपने देखा carbon का oxidation number minus 4 आ रहा था, जबकि उसी carbon का oxidation number carbonate ion में plus 4 आ रहा है. तो ये डिपेंड करता है कि किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन है. सो ये जरूरी नहीं है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 4 आएगा. इट कैन बी माइनस, जैसे माइनस 4 भी हो सकता है. एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डियर लर्नर्स यू हैव टू प्रैक्टिस दीज.
आई गिव वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल.
हाँ ये
नाउ यू कंसिडर मिथेन, इथाइल अल्कोहल, एस्टेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, C2H4, C2H2. The oxidation number of carbon is different in all.
All, basically.
In methane it is minus 4. In methyl alcohol it is minus 2. In formaldehyde it is 0. In formic acid it is plus 2. In C2H4 it is minus 2. In C2H2 it is minus 1. So all are the compounds of carbon. But the oxidation number of carbon,
it changes
from compound to compound.
We should not stick that the oxidation number of carbon cannot be more than or less than the 4. It cannot be more than 4, but it can be less than plus or minus 2, minus 1, 0, depending on the compounds. So these important rules are very important for to understand what is the oxidation number of a particular element in a compound. And it is matter, you have to just practice out, and it is very simple things. You just try to find out at least 10, just write down 10 compounds by your memory and try to find out the oxidation number of every element. And just try another example. You will see that suppose in case of ammonia, you will find out, you find out the oxidation number of nitrogen and then hydrogen. And sum up all these, you will get the 0. So this is a very important and very interesting exercise you can do at the home. And in
they have to practice the rules.
Yeah,
they have to practice the calculation of the oxidation number by using these rules. Now you can consider the case of some compounds of chlorine. Some compounds of chlorine. HCl. HClO. ClO4, one negative chlorate ion. And bleaching powder. So in every case, the oxidation number of chlorine is different. In bleaching powder, the oxidation number of chlorine is 0. In case of the ClO4 chlorate ion, the oxidation number of chlorine is plus 7. In the case of HClO, hypochlorite, in this case, the oxidation number of chlorine is plus 1. And HCl, it is minus 1. So there are many examples and you have to practice them.
And the very simple things, you have to remember the rules and just practice out the very interesting thing, and not too hard to just understand what is the concept of oxidation number and how we can identify the oxidation number of particular elements. And next to this, now we can understand, and generally we say that when the positive charge definitely increases, suppose Fe2 plus goes to Fe3 plus, we say the oxidation process. And when the negative charge further increases, suppose 2 minus, say 3 minus, or 4 minus, or then we say this is the reduction. That is, when an element gains against the electron, their negative charge will increase. And when the positive charge increases, when they lose the electrons.
So the example which we have just told, on this basis, now we can give the answer of that equation. H2S plus HNO3, it changes to NO plus S plus H2O. Now in this case, you can find out the oxidation number of sulfur. It is -2, both the sides, -2. On the other side, because it is in the elemental form, it is 0. So -2 changes to 0, increase in oxidation number. That is oxidation. Now in HNO3, the oxidation number of nitrogen plus 5, it changes to NO, where the oxidation number of nitrogen is plus 2. So there is a decrease in the reduction number. And when there is a decrease in the reduction number, this is a reduction. So now we have that it is an oxidation. This is a reduction. And when there is a reduction, HNO3 acts as the oxidizing agent. And when there is, in case of H2S, this is oxidation, H2S is a reducing agent. So we can identify the oxidation and reduction process, and which is oxidant and which is
reactant. So in this type of equation, you generally find out the which element is common on the both side, reactant or product side. So in this equation, the sulfur is the common, the both product side and the reactant side. And the nitrogen is also common in the reactant and the product side. Both side, first of all, you have to identify to show the oxidation number of sulfur and then oxidation number of nitrogen. And you will see very simple. That in case of sulfur, the oxidation H2- in the H2S is decreased to 0. That means the two negative charges has released, and that release had 2 electrons. That's why the charge becomes 0. Because if it will get electron, its charge will go on high. Agar -2 hai aur -2 se 0 ho raha hai, iska matlab it has released the electron that is oxidized. और नाइट्रोजन के केस में आपने देखा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 आ रहा है नाइट्रिक एसिड में, और एनओ में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा प्लस 2. दैट मींस प्लस 5 से प्लस 2 हो रहा है. दैट मींस इट हैज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रिडक्शन. एंड दिस इज आल्सो द वन एग्जांपल वी हैव गिवन, बट देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल गिवन इन द बुक. यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर and identifying the oxidation reduction part in given chemical equation, we are with you. You can call us on our call number 0120-4626-949 or our toll free number 1800-180-2543, or you can also send us your queries through the email, and our email is aochem@nius.ac.in. So we are waiting for your queries related to this electrochemistry chapter. Further, we are going to discuss about the another question. I would say that there are a few compounds are given. Suppose SiH4, BS3 and 3. So sir, what is the oxidation number of silicon and this SiH4, boron, in these two compounds?
Now, in order to calculate the oxidation number of these compounds, please use the same rule which we have already told you.
Just discuss.
And these rules are very simple, which we have just told you. And in this case, the oxidation number of SiH4,
we have to find out
the silicon.
Suppose it is X.
Suppose it is X. Hydrogen plus one. So hydrogen plus 4 and silicon ka minus 4. In the case of BH3, hydrogen plus 1. So if
it's a plus 3, X plus 3, that is equal to 0.
In the case of BF3 also, because it is
electronegative.
Fluorine is electro.
So in this place, we have to say X minus 3 we have to use. That is equal to 0.
So in this case, BF3, so X minus 3 is equal to 0. So X is equal to 0. So boron is also
oxidation number plus 3.
In this case, it is plus 3.
And in the case of BH3, it is minus 3. And the SiH4 silicon has minus 4. So these are very simple things. The only thing that we have to practice it. And we are ready to help you. Your queries, you can send us. And next, we are going to discuss about the different methods of balancing redox reaction. That is the, dear learners, this is the most important part of this chapter. you have to learn how to write the balancing of redox reactions in acidic as well as basic medium. So, sir, I just want to know what are the basic general steps we are following, yeah, general rules we can say, to start the balancing of a redox reaction if the medium is provided, acidic or basic medium.
Well, learners, it is a very important part of the redox reactions. Mm. Before going to this oxidation balancing of the chemical equations, I want to tell you that, as I had discussed, the oxidation number can be positive, can be negative, can be zero. Mm. It can be in fractions also.
Fractions also, yeah.
So, learners, you calculate the oxidation number of iron in Fe3O4. Mm. Fe3O4 is a, you can say, the
ferric oxide,
ferric magnetic oxide of iron, which has a mixture of FeO and Fe2O3.
Yeah.
So, in this case, we have to find out the average oxidation number of iron, which comes out to be 8/3.
Mm-hmm.
So, if somebody or in the examination generally, sometimes of the typical question comes, then one should not be worried and say, no, the oxidation number is coming in the fractions.
Mm-hmm.
So, don't worry, the oxidation number can also go in the fractions.
Fraction also, yeah.
In the, I have given one example of Fe3O4.
Mm-hmm.
The another example is ferriferrocyanide, Fe4. FeCN6 whole thrice. In this case also, if we calculate the oxidation number of iron, because it is a, you can say, the in this molecule we have four iron atoms with positive 3 oxidation number and 3 iron atoms which has the oxidation number plus 2.
Yeah.
Ferric jo hai wo 3 oxidation number hota hai, ferrous ka 2 hota hai. Aur ye in sab ka कॉम्बिनेशन है. तो इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट कम्स इक्वल टू बी 18/7. सो लर्नर्स, यू प्लीज कैलकुलेट योर सेल्फ. आई एम गिविंग द आंसर. इन द केस ऑफ द Fe3O4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज कम्स आउट टू बी 8/3. इन ferrocyanide, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कम्स टू बी 18/7. So one should not worry that our oxidation in the calculation, the oxidation number is coming in fractions. It comes also in fractions also. Now, the methods for balancing the chemical equations, there are two methods. One is the oxidation number method and another is the ion electron method or half reaction method.
Yeah.
Let us take one by one. First, we are going to discuss the oxidation number. There are some steps involved in balancing the redox reaction by oxidation number method. First of all, write the skeletal equations of the reactions, chemical reaction without any coefficient or stoichiometric ratio. Number two step is write the oxidation number of each atom above its symbol. Iske jo symbol equation jo hamare hain, unke upar aap unka oxidation number likh dijiye. Third step है, identify the atoms undergoing the change in oxidation number. किन कौन कौन से atom है जिनका के oxidation number change हो रहा है? कुछ atoms ऐसे भी होंगे जिनका oxidation number change नहीं होता.
As it is, reactant और product side दोनों same होगा.
तो find out which are the atoms which are undergoing change in the oxidation number. Fourth step is, calculate the increase or decrease in the oxidation number per atom for the atom undergoing the change in the oxidation number. If more than one atom is involved, multiply the increase or decrease in number with the number of atoms undergoing the change to determine the total change in the oxidation number. Total net हमारा जो oxidation number में जो total change हो रहा है, उसको determine करने के लिए जो atoms में increase or decrease oxidation number हो रहा है, उससे multiply करते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइट बाय मल्टीप्लाइंग द फार्मूला ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबली. देखना पड़ेगा कि किससे हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फार्मूला और रिड्यूसिंग एजेंट का फार्मूला किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें. ये डिपेंड करता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन.
सपोज एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ बता दूं लर्नर्स को, अगर सपोज कीजिए ऑक्सीडेशन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और रिडक्शन प्रोसेस में तीन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन स्टेप बाई थ्री एंड दिस मल्टीप्लीकेशन शुड बी डन इन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में आप नहीं करेंगे। वो मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आप सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हाइड्रोजन का बैलेंसिंग एज पर द रूल सर इज प्रोवाइडिंग यू।
सो इस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो कि रिएक्टेंट साइड पर हमको करना पड़ेगा उसके बाद में बैलेंस द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं हमारे दोनों साइड पर उनको देखना है कि किस साइड पर जाते हैं किस पर कम है तो उनको बैलेंस करना है। फाइनली बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। नाउ इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम देन बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स by adding the required number of water molecules on the side where oxygen atoms are in less number balance the hydrogen atoms by adding hydrogen ions
H plus ion
to the side which is deficient in hydrogen atom. तो ये हमको एक बहुत important है जो कि acidic medium में use होता है कि हमको एसिडिक मीडियम में एटम्स ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमको वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड नंबर जोड़ने पड़ेंगे किस साइड पर जहां पर के ऑक्सीजन एटम्स का लेस नंबर हो। और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमको हाइड्रोजन आयन जोड़ने पड़ेंगे उस साइड पर जहां पर के हाइड्रोजन एटम्स डेफिशिएंट कम हो।
और यहां पे लर्नर्स आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, यहां पे जब भी आप बैलेंसिंग करें ऐसा तो सबसे पहले ट्राई करें आप ऑक्सीजन को बैलेंस करना, पहले आप हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करेंगे, पहले आप देखें हाइड्रोजन किधर शॉर्टेज है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में, पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जैसा सर ने बताया यू हैव टू पुट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज शॉर्टेज इन द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड। तो पहले ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस कर ले और इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे एंड दैट हाइड्रोजन शुड बी बैलेंस बाय पुटिंग इक्वल नंबर ऑफ H प्लस आयन इन द साइड ऑफ शॉर्टेज दैट इज डन इन द एसिडिक मीडियम।
इन बेसिक मीडियम अब बेसिक मीडियम में क्या होता है कि बेसिक मीडियम में एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस बाई एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH आयन्स, मतलब निगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमको OH आयन्स जो है वो एड करने पड़ेंगे टू द साइड डेफिशिएंट इन द निच्यूड ऑफ चार्जेस, जहां पर चार्जेस कम हो उधर पर हमको OH आयन जोड़ने पड़ेंगे एंड देन एड वाटर मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस दी OH आयन्स को बैलेंस करने के लिए
फिर वाटर।
अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं एक एक जिससे कि हमको कुछ मतलब ये क्लियर
क्लियरिटी
आ जाएगी। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले जैसे एसिडिक मीडियम का हमने लिया तो हम लेते हैं क्रोमेटाइन डाइक्रोमेटाइन का K2Cr27 प्लस फेरस ऑक्साइड फेरस सल्फेट इन द एसिडिक मीडियम इट फॉर्म्स द क्रोमिक एसिड एंड द फेरिक सल्फेट। सो Cr2O72 नेगेटिव
डाइक्रोमेटाइन
प्लस Fe2 पॉजिटिव इट गिव्स क्रोमेटाइन इट गिव्स क्रोमिक एसिड Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव फेरिक एसिड। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद द फेरस आयंस इन एसिड मीडियम गिव्स फेरिक आयंस एंड द क्रोमिक आयंस। नाउ अभी हम इनको बैलेंस करना है तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से Cr2O72 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। नाउ फाइंड आउट विच इज गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन विच इज गोइंग अंडर रिडक्शन। सो इन द केस ऑफ Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव मीन्स देयर इज ए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हेंस इट्स ऑक्सीडेशन। नाउ Cr2O7 में जो क्रोमियम है इसके दो क्रोमियम के एटम है दे आर चेंजिंग टू Cr3 पॉजिटिव। तो यहां पर जो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है और ये चेंज होता है क्रोमियम के 3 पॉजिटिव। सो देयर इज ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हेंस इट इज ए
रिडक्शन।
सो व्हेन वी फाइंड आउट व्हेन वी आफ्टर identifying the oxidation reduction now find out which is oxidant which is reductant. Now chromatin dichromatin it is reductant and ferrous ion it is an oxidant. Now ab inko balance karna hai Cr2O7 negative plus isme aap dekhiye kitne number ka hamara decrease hua oxidation number hamara decrease hua chromium ke case mein 6 ka
6 yeah
तो क्योंकि सिक्स का हुआ है, थ्री का फॉर वन क्रोमियम एटम, बट देर आर टू क्रोमियम एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन
फॉर टू एटम,
फॉर टू एटम्स देन इट इज सिक्स. सो मल्टीप्लाई फेरस आयन बाई सिक्स,
बिकॉज इन केस ऑफ फेरस दैट इज फेरस टू कन्वर्टेड इन टू फेरिक and here is a difference of one electron,
तो इसको आप सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे को आप एक से मल्टीप्लाई करते हैं, बात पूछना है दूसरे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें जो है चेंज आ रहा है, तो सिक्स एफ ए टू पॉजिटिव चेंज. नाउ इन सी आर टू सेवन प्लस सिक्स एफ ए टू सिक्स, ये एक इक्वेशन हम बना ली, इसको क्रोमिन जो दूसरे एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को छोड़कर जो दूसरे एटम उसको बैलेंस कर लें, तो इधर क्रोमियम के दो है डाइक्रोमेट में, इधर क्रोमियम टू सी आर थ्री पॉजिटिव कर लिया और ये हमने इक्वेशन आ. नाउ जहां पर के हमारा एसिडिक मीडियम है, इस एसिडिक मीडियम में हमको ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने है पहले, तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए हमको वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे जहां पर के डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन नंबर. अब सीआर टू ओ सेवन में सात ऑक्सीजन एटम है, तो हमको सेवन एच टू ओ के मॉलिक्यूल्स
इन द प्रोडक्ट साइड,
इन द प्रोडक्ट साइड राइट हैंड साइड पर जोड़ने हैं जो कि डेफिशिएंट है ऑक्सीजन में, तो सेवन एच टू जोड़ दिया. नाउ अब ये सेवन एच टू में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको हाइड्रोजन आयन जोड़ने हैं
रिएक्टेंट
साइड पर. तो अब हमारे पर क्या हुआ कि हमने 14 एच आयन जो है वो रिएक्टेंट साइड पर दो दिए और हमारी इक्वेशन बन गई सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव प्लस 14 एच पॉजिटिव प्लस 6 एफ ई टू पॉजिटिव, इट बिकम्स इक्वल टू 2 आर सी आर थ्री पॉजिटिव प्लस 6 एफ ई थ्री पॉजिटिव प्लस 7H2. दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम.
वेन वी डू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द इम्पोर्टेंट थिंग द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज डन एज पर द रूल, बट द बैलेंसिंग ऑफ अदर एलिमेंट सपोज इन द केस ऑफ आयरन और क्रोमियम यू हैव टू बैलेंस बाय द हीट एंड ट्रायल मेथड वी आर यूजिंग, बिकॉज द बैलेंसिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देर इज नो रूल, वी हैव टू जस्ट बिकॉज रिएक्टेंट साइड में सिक्स है तो प्रोडक्ट साइड में सिक्स होगा. केवल आप याद रखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सर्टेन रूल्स हैं एंड दीज रूल्स वी हैव टू फॉलो एवरी टाइम व्हेन यू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम. एंड नाउ वी विल सी हाउ द रेडॉक्स रिएक्शंस आर बैलेंस्ड इन द बेसिक मीडियम.
इन दिस केस लेट अस टेक वन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. When potassium permanganate reacts with the bromide ion in basic medium, it gives manganese dioxide and bromate ion. So equation हम लिख लेते हैं, skeletal equation लिखेंगे. MnO4 negative potassium permanganate plus Br bromide ion negative. It changes to MnO2 manganese dioxide plus bromate ion BrO3 one negative. नाउ फाइंड आउट इसमें किसमें ऑक्सीडेशन का डिक्रीज हुआ, किसमें ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें रिडक्शन हुआ.
वही पहला स्टेप,
पहला स्टेप वो करते हैं, वो सब वही रहेंगे. तो इन दिस वे की कैन से दैट बी आर निगेटिव वन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस टू बी आर ओ थ्री निगेटिव में पांच ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमाइड का है
प्लस 5.
वहां पर जो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस 5 है और यहां पर जो बी आर में है लेफ्ट हैंड साइड पर इसमें इसका बी आर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 1 नेगेटिव है. तो क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6. MnO4 चेंजेस टू MnO2. यहां पर MnO4 में नेगेटिव में नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट में जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 है, इट चेंजेस टू MnO2 प्लस 5, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हैंस रिडक्शन. तो नाउ वी हैव फाउंड आउट विच इज रिडक्शन, वेयर इज द ऑक्सीडेशन. And when you know what is oxidation, where is the oxidation, which is reduction, you can identify which is oxidant and which is reductant. Now, oxidation में जो increase हुआ है वो plus 6 का हुआ है और decrease oxidation number में plus 3 का हुआ
है.
Now, in order to have equal increase in the oxidation number of reductant, bromide ion, and decrease in the oxidation number of the oxidant, means परमैंगनेट आयन, मल्टीप्लाई MnO4 जो है उस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
2 से, या
2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 MnO4 नेगेटिव बिकम प्लस Br नेगेटिव इज इक्वल टू,
वी हैव टू मल्टीप्लाई 2
MnO4 को एंड MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव बिकम्स इक्वल टू 2 MnO4 1 नेगेटिव चार्ज प्लस Br नेगेटिव 1 चार्ज, इट बिकम्स इक्वल टू 2 MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव. नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम कैसे करेंगे, एड वाटर मॉलिक्यूल ऑन प्रोडक्ट साइड. वाटर मॉलिक्यूल को हम कहां जोड़ेंगे, प्रोडक्ट साइड पर. तो प्रोडक्ट साइड में हमने एक H2 मॉलिक्यूल उधर जोड़ दिया बिकॉज देयर इज ए लेस ऑक्सीजन नंबर. यहां पर क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन के नंबर के 4 × 8 है और यहां पर हमारे 2, 4, 4 और 3, 7 है, तो एक H2 हमने उधर जोड़ दिया टू बैलेंस द ऑक्सीजन
ऑक्सीजन.
नेक्स्ट स्टेप इज एज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम फॉर बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एटम. अब इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है हमारे राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट साइड पर, वी एड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मीन ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो हमारे जो इक्वेशन बनी 2MnO4 निगेटिव चार्ज प्लस Br निगेटिव चार्ज प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस ब्रोमेटान BrO3 निगेटिव प्लस H2O. नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स वी एड 2OH आयंस ऑन द राइट हैंड साइड अपोजिट साइड, तो जहां पर H2O से अपोजिट साइड में 2H आ दिया. अब इक्वेशन बन गई हमारी की 2MnO4 निगेटिव Br निगेटिव प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस BrO3 प्लस H2O प्लस 2H. H2O से H2O ये काट देते हैं. इक्वेशन फाइनल ये होता है कि एक H2O का मॉलिक्यूल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है और 2OH आयंस हमारे राइट हैंड साइड
अपोजिट साइड
अपोजिट साइड. ये इक्वेशन
तो बेसिक में थोड़ा सा डिफरेंस है डियर लर्नर्स, आप ध्यान देंगे. जैसे हमने एसडीक में बताया कि पहला रूल है वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन बाय पुटिंग इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और जितना भी हाइड्रोजन शॉर्टेज होगा उसको एच प्लस से बैलेंस करेंगे. बेसिक मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, देयर इज द सेम रूल द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज बैलेंस बाय पुटिंग इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. जब आप एक काम कर देंगे इसके बाद बेसिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप क्या करना है, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका वही है. जब आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया जितना भी शॉर्टेज होगा उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए. अब हाइड्रोजन बैलेंस करने की बारी है. यहाँ पे आप ध्यान देंगे बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिधर भी हाइड्रोजन घट रहा है उधर आप उतना वाटर मॉलिक्यूल एक बार और ऐड करेंगे और जिधर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं उसके जस्ट रिवर्स साइड में इक्वल नंबर ऑफ OH- आयन ऐड करना, दैट इज द मेन कंसेप्ट. तो अगर आप याद रखते हैं तो बेसिकली एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम बैलेंस करना बहुत इजी है और ये आपका एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कभी भी आपका एग्जाम होगा आप ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर होंगे कि बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द मीडियम एसिडिक और बेसिक मीडियम. सो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 एसिडिक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड 10 बेसिक मीडियम. आप अगर 10-10 भी प्रैक्टिस कर लेते हैं देयर इज सफिशियंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फॉर बैलेंसिंग ऑफ दिस रेडॉक्स रिएक्शंस. एंड फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड हाउ इट इज मेजर्ड इन शॉर्ट सर हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस and next ion electron method is I think we can discuss here that we have discussed about the oxidation number method of balancing these equations. So let us see how we can balance the redox reaction by the ion electron method, that is the second method of balancing.
This is a very important method for balancing the redox reaction by ion electron method or the half, you can say the half reaction method. उसमें इसमें भी उसी तरह जो है प्रोसेस इज द सेम, देयर इज सम चेंजेस एट द लेटर पार्ट. राइट द स्केलेटन इक्वेशन एज वी डू इन द केस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर. राइट हाफ रिएक्शन सेपरेटली ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बैलेंस द हाफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एटम्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स एज वी हैव डन इन द ऑक्सीडेशन नंबर. इसको वहां तक कर लेते हैं. नाउ बैलेंस द चार्जेस if necessary these be balanced by the addition of electrons on either side of the equation. किसी भी तरह जहां पर हमको चार्ज को बैलेंस करना होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन को हम एड करते हैं
either loss of electron or gain of
electron reactant side. Multiply the half reaction equation by the appropriate coefficients so that the number of electrons involved in both the equations is the same. मतलब जितने हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो हम देखते हैं कि उधर भी इलेक्ट्रॉन का उतना ही हो और दूसरी साइड पर भी इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए तो उधर हम कुछ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एप्रोप्रिएट कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड देन ऐड बोथ द इक्वेशंस एंड कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स ऑन आइदर साइड एंड द कॉमन स्पेसिस we get the reactions.
Yeah.
Now, as we have done in the case of the acidic medium, one we have taken the example. Let us also consider one example in this case also. And the same example we can take. MnO4 potassium permanganate reacts with the ferrous ions, forms the MnO2 plus ferric ions in acidic medium.
Yeah.
Now, in this case, you know that there is a decrease in oxidation number from 7 to plus 2 from Mn manganese. So, there is a reduction and increased oxidation number in the case of the ferrous into ferric.
There
is a oxidation. And no, you can find out which is oxidant and which is reductant. MnO4 is oxidant and iron Fe2 positive is a reductant. Now, divide into two, split into two.
Two half reactions. That is the basic
one reaction is MnO4 negative changes to Mn2 positive and Fe2 positive changes into Fe3 positive. तो उसमें जो है हमको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमको 8 हाइड्रोजन आयन जो है वो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमको 4 मॉलिक्यूल वाटर के प्रोडक्ट साइड पर जो
ऐड करने पड़ेंगे
और इन 4 मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमको 8 पॉजिटिव एच पॉजिटिव जो है आपको रिएक्टेंट साइड पर जोड़ने हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है MnO4 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव इज इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O. अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो आयरन है इट चेंज गिव्स आउट वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स Fe3 पॉजिटिव गिव्स वन इलेक्ट्रॉन तो हम जो है इसको बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं विद सुटेबल कॉफिशियंट्स तो इक्वेशन बन जाती है हमारी MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H आयंस बिकम्स इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने फेरिक आयन के केस में हमारे प्रोडक्ट साइड पर थे और MnO4 वाले केस में हमने जो उसको रिएक्टेंट साइड पर जोड़े हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है MnO4 नेगेटिव प्लस 8 एच आयंस प्लस 5 Fe पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 तो इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं उनको हम कैंसिल
सो इस इन दोनों मेथड्स में एक बहुत ही समानता आप इक्वेशन को बैलेंस करें एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में आपका जो मेथड होगा वी हैव टू फॉलो एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड बेसिकली इन द हाफ रिएक्शन मेथड You have to split the two equations, that is the oxidation part and reduction part, you have to write the separately. And the balance with the help of electrons. Either oxidation step you have to show the electron and reduction step you have to show the balancing. And in the both the half reactions, either oxidation or reduction, you have to balance the oxygen atom and hydrogen atom as per the rule we have discussed in the case of oxidation number method. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स में जनरली हम लोग इक्वेशन को स्प्लिट नहीं करते दीज आर द चेंज इन ऑक्सीडेशन इज शोन बाय द एरो ऑन द स्केल्टन इक्वेशन इटसेल्फ बट इन द केस ऑफ हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वी हैव टू स्प्लिट द टू रिएक्शंस दैट इज हाफ इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ इज रिडक्शन रिएक्शन एंड अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन चार्जेस बेसिकली बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड due to we have very short time now so the basic concepts of the electrolytic conductance and the factor affecting electrolytic conductance and the another important topic called Raw's law we will discuss in our next program that probably it will come to the next month in the first week or second week so you are requested to see the our website that is NIS website and when this part of senior secondary chemistry is going on the next month and we will start in this program from the electrolytic conductance and the meantime you are requested that you try to solve these oxidation number and reduction number identification of oxidation reduction balancing of these redox reaction in the both acidic and basic medium by both the method oxidation number method and ion electron method or half reaction method And if you have any problem in this topic, we are with you. You can send us email at the given email. I am just repeating this my email address. That is aochem at the rate of nios.ac.in. And finally, I just want to say, sir, something important tips in the short, how these can be done very accurately. What are the precautions they can?
The rules we have told. And the how to identify the oxidation reduction, this you can find out. My request to the learners is that they should do more examples.
Practice
for the oxidation number, balancing the equation, redox reaction by the oxidation number and balancing of the equation by an electron method. Find out as many examples from your textbook or from other textbooks also, NCERT or some other book, and calculate or balance the redox reaction by these two methods.
And the very important thing that when you balance all these, check out the total number of atoms and charges in the reactants and product sides. So thank you, learners, for listening about this. And thank you, Professor Puranjanji, for coming in our studio. Thank you.